इब्रानियों बाब 10। शरीयत ने हमें एक गैर वजह अक्स अपनी चीज़ों का दिया जो आइंदा होने वाली हैं। शरीयत हकीकी चीज़ों की कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं। लोगों ने वही कुर्बानियां हर साल पेश की जो लोग खुदा की इबादत के लिए आए हैं। ये शरीयत की कुर्बानियां लोगों को कभी कामिल नहीं बना सकती। अगर शरीयत ही आदमियों को कामिल बनाती तो ये कुर्बानियां ख़त्म हो जाती और जो लोग खुदा की इबादत को आते हैं वो एक ही मर्तबा में अपने गुनाहों से पाक हो गए होते और गुनाहों का एहसास न होता। लेकिन उन कुर्बानियों को पेश करते रहने से उन लोगों ने अपने गुनाहों को हर साल याद किया। ये मुमकिन नहीं था कि बैलों और बकरों का खून उनके गुनाहों को दूर करे। जब मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने कहा,
ऐ मेरे खुदा, तूने नजरानों और कुर्बानियों की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन तूने मेरे लिए एक जिस्म को तैयार कर लिया है। जलाने की पूरी कुर्बानियों और गुनाहों की कुर्बानियों से तू खुश न हुआ। तब मैंने कहा था, मैं यही हूँ। लिपटे हुए कागज में मेरे लिए शरीयत की किताब में यही लिखा है, ऐ खुदा, मैं तेरी मर्जी पूरी करने को आया हूँ।
सहीफों में उसने पहले ही कहा था कि
न तो ने कुर्बानियों और न नजरानों और न जलाने की नजरानों और न ही गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और न उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियां शरीयत के मुआफिक पेश की जाती हैं।
तब उसने कहा,
ऐ खुदा, मैं यहाँ हूँ और मैं तेरी मर्जी को पूरा करने आया हूँ।
इसलिए खुदा कुर्बानियों के पहले के तरीके को मौकूफ करता है ताकि नए और दूसरे तरीके को कायम करे। यीशु मसीह ने वही किया जो खुदा ने चाहा, और इसीलिए हम मसीह के जिस्म की कुर्बानी से पाक हुए, जिसे मसीह ने एक ही मर्तबा दी, और उनकी एक ही कुर्बानी सबके लिए और हर वक्त के लिए काफ़ी है। हर रोज़ काहिन खड़े रहते हैं अपनी अपनी मजहबी खिदमात अदा करने के लिए, और वो बार बार वही कुर्बानियां पेश करते हैं, लेकिन ये कुर्बानियां हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन मसीह ने एक मर्तबा ही गुनाह के लिए कुर्बानी दी जो सबके लिए काफ़ी थी। फिर मसीह खुदा की दाहिनी जानिब बैठ गए, और अब मसीह को वहाँ उनके दुश्मनों का इंतज़ार है कि उन्हें उनके अख्तियार में दिया जाए। मसीह ने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए मुकद्दस कर दिया है। रूहुल कुद्दूस भी हमको इस बारे में गवाही देता है। पहले वो कहता है,
यह मुआहदा है जो मैं अपने लोगों से बाद में करूँगा। खुदावंद कहता है, मैं देखूँगा कि मेरा कानून इनके दिलों में दाखिल हो और मैं अपने कानून को इनके जहनों में लिखूँगा।
तब वो कहता है,
मैं इनके गुनाहों और इनके बुरे कामों को माफ़ करूँगा, फिर कभी भी याद ना करूँगा।
जब गुनाह माफ़ हो चुके तो अपने गुनाहों के लिए और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। बस ऐ भाइयों और बहनों, यीशु के खून से अब हम मुकद्दस तरीन जगह में यकीन के साथ दाखिल हो सकते हैं। हम उस नए रास्ते से दाखिल हो सकते हैं जो यीशु ने हमारे लिए खोला है। ये नया रास्ता पर्दे के जरिए उसका जिस्म है। खुदा के घर पर हमारा अजीम काहिन है। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारे दिलों को गुनाहों के एहसास से पाक किया गया है और हमारे जिस्मों को पाक पानी से धोया गया है। तो आओ हम सच्चे दिल के साथ और पूरे ईमान के साथ खुदा के पास चलें, और जिस उम्मीद पर हम कायम हैं उसकी बुनियाद मजबूत है, क्योंकि खुदा ने वायदा किया है वो काबिले एतबार है। हमें एक दूसरे के मुतालिक सोचना चाहिए कि हमको एक दूसरे से मोहब्बत और अच्छे काम करने में एक दूसरे का लिहाज रखें, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। ये चंद लोगों की आदत है। तुम्हें एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, और ख़ास तौर से तुम देखते हो कि वो खुदावंद का दिन करीब आ रहा है। अगर हम सच्चाई जानकर उमदन भी गुनाहों के सिलसिले को कायम रखें तो फिर और कोई कुर्बानी नहीं जो गुनाहों को दूर कर सके। अगर हम इसी तरह गुनाह करते रहें तो फिर खतरनाक फैसला اور بھیانک آگ کے خطرے میں ہیں جو خدا کے دشمنوں کو تباہ کر دے گی۔ اگر کوئی بھی موسیٰ کی شریعت ماننے سے انکار کرے تو دو یا تین لوگوں کی گواہی سے مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو بغیر رحم کے مارا جاتا ہے۔ تب تم خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹا کو پیروں تلے کچلا، اور عہد نامے کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا،
میں لوگوں کو ان کے برے کاموں کی سزا دوں گا اور میں ہی بدلہ دوں گا۔
اور خدا نے یہ بھی کہا،
خداوند ہی اپنے لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔
کسی گنہگار کا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑ جانا ایک خطرناک بات ہے۔ شروع کے ان دنوں کو یاد کرو جن میں تم نے سچائی کی روشنی پائی تھی۔ تم نے کافی مشکلات کا سامنا کیا اور پھر سختی کے ساتھ ڈٹے رہے تھے۔ کبھی تو لوگوں نے تمہیں نفرت انگیز باتیں کی اور دوسرے لوگوں کے سامنے ستانا شروع کیا، اور کبھی تو تم نے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جنہوں نے اس طرح کا سلوک کیا تھا۔ ہاں، تم نے ان لوگوں کی مدد کی جو قید میں تھے اور ان کی مصیبت میں ساتھ رہے۔ جب تمہاری جائیداد تم سے چھین لی گئی تو تم نے خوشی سے قبول کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے۔ اسی لیے اپنی دلیری کو ہاتھ سے جانے نہ دو، اس کا بڑا اجر ہے۔ تمہیں صبر کرنا چاہیے کہ تم نے خدا کی مرضی کے مطابق کیا ہے، تاکہ تم وہ چیزیں حاصل کرو گے جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور بہت ہی کم وقت ہے۔
آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، وہ شخص خدا سے راستباز رہے گا، اس کے ایمان سے زندگی ملے گی۔ لیکن وہ آدمی ڈر سے پیچھے ہٹے گا تو خدا اسے خوش نہ ہوگا۔
لیکن ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو خدا کی راہ میں ڈر سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو بچا لیا جاتا ہے۔